श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 30। सादि भूतादि देवं माम सादि यज्ञं च ये विदुहु प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। बहुत प्रेरणादायक श्लोक है। जो व्यक्ति असेंशियली इस जीवन में भक्ति कर रहा है कृष्ण को अपना आश्रय मान करके, ऐसा नहीं है कि मृत्यु के समय भगवान उसको छोड़ देंगे, अपितु भगवान की ही व्यवस्था से वो मृत्यु के समय भगवान को समझ पाएगा और भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएगा। तो इसलिए ये प्रश्न संगत नहीं है कि जिसने जीवन भर भक्ति करी वो भगवान को अंत में भूल जाएगा तो क्या होगा। ऐसा इस तरह से होता नहीं है। जो जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का निर्वलीक यानी कि एकदम सच्ची भावना से भजन करते हैं, भगवान निश्चित रूप से उनका ध्यान रखते हैं जब वो शरीर त्यागते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णता समझने के पथ से विचलित नहीं होते, अर्थात इधर उधर की बातें नहीं सुनते हो, स्पेशली मनोधर्मियों की बातें नहीं सुनते कि ईश्वर निराकार है या सभी देवता भगवान है ना। भगवद्गीता को सुन करके उनका श्रद्धा दृढ़ रहती है और वो कृष्ण के ही भजन में, अनन्य भजन में लगे रहते हैं। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य ये समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। कृष्ण भावनामृत का दिव्य सानिध्य से अर्थ समझना चाहिए कि भगवान के बारे में भगवद्गीता और श्रीमद् भागवतम से साधुओं के संग में सुनना, ये कृष्ण भावनामृत का दिव्य सानिध्य है और इससे हमारे हृदय में दिव्य श्रद्धा जागृत होती है। अदरवाइज हम कैसे समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण सभी देवताओं के नियामक हैं? तो ये हम श्रद्धा से स्वीकार करते हैं और श्रद्धा का निर्माण भक्तों के संग में होता है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य को भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। प्रायः लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान में हमें दृढ़ श्रद्धा कैसे हो, तो ये बहुत सिंपल सा उसका उत्तर है। भगवान में जितनी भी श्रद्धा है वो कैसे आई? भक्तों के मुख से सुन करके। तो भक्तों के मुख से, प्रमाणिक शास्त्रों से सुन करके जैसे अभी तक श्रद्धा आई है, ऐसे ही श्रद्धा का विकास भी आगे होगा और इस चीज को करते रहना चाहिए। बार बार श्रीमद् भगवद गीता भागवत मंत्र सुनना और नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र जप करने से जैसे जैसे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारी श्रद्धा सहज रूप से भगवान में बढ़ने लग जाएगी। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो यही बात हमने जब अनुवाद के बारे में टीका कर रहे थे, मैं टिप्पणी किया था, तो यही बात बताया था कि जीवन भर भक्ति करें, श्रवण कीर्तन में लगे रहेंगे तो सहज रूप से भगवान पे श्रद्धा बढ़ जाएगी और व्यक्ति बड़ी आसानी से भगवान के धाम की प्राप्ति कर पाता है। इसी का अर्थ होता है चेतो दर्पण मार्जनम। यह सातवां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। पहले श्लोक में बताया गया था, मैया सक्तम मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तश्रु। किस प्रकार से भगवान में हम पूरी तरह आसक्त हो सकते हैं वो इस अध्याय में बताया गया है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिना भगवान भक्तों के संग के हम प्रगति कर सकते हैं, या फिर भक्तों का संग हमको बस शुरुआत में करना है और बाद में बंद कर देना है। कृष्ण भावना हमेशा ही भक्तों के संग पे निर्भर करती है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। बहुत सुंदर बात है, जब भक्तों के संग में आके भगवान से सुनते हैं, क्षमा कीजिएगा, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो वो ऐसी संगति आध्यात्मिक होती है और इसके द्वारा भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है और फिर हम कृष्ण को सहज रूप से अपने हृदय में भगवान के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्य में उलझ जाता है। ये भी अनुभूति होती है कि कैसे मैं लगातार कृष्ण को भुलाने का प्रयास कर रहा हूं। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हर जीवात्मा कृष्ण को से अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो इस बात की अनुभूति होती है। हमने पढ़ा भी था चार प्रकार के दुष्कृत्य वाले लोग भगवान के पास नहीं आते। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस तरह कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। बहुत सुंदर है कैसे हम लोग भोग करने के कारण जगत में बंधे हुए हैं और बंध जाएंगे। ये भगवान के भक्तों के मुख से श्रवण करके हरि कथा को समझ में आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और मान लीजिए पहले उसको पता नहीं था रोग कैसे हो गया, फला एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी को जुखाम है, तो अब उसको मालूम जब भक्तों के संग में या डॉक्टर के संग में आता है तो मालूम चलता है कि दही खाने से, चावल खाने से, ठंडा चीज खाने से आपका जुकाम बढ़ जाएगा, तो बीमारी का अनुभव कर रहा है, दवाई के बारे में जानता है और ये भी जानता है कि किन चीजों का सेवन करने से उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये सब भक्तों के संग में होता है, नहीं तो जहर को ही अमृत मान करके पूरा जीवन हम अपना बिता सकते हैं। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका उपयोग परमेश्वर के अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। नाते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हम अब जीवन में सारे कार्य इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे हित के लिए हों, या हित की भावना रहती है। वो हितकारी होंगे या नहीं अलग बात है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मेरा हित होगा, इस कारण से व्यक्ति इन कार्य को करता है। लेकिन व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ हित है भगवान कृष्ण का आश्रय लेना, तो ये भक्तों के संग में ही मालूम चल पाता है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर भक्तों का संग छोड़ते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बाकी लोगों को जिनको पता नहीं है भगवान के बारे में, वो निश्चित रूप से आपको कन्विंस कर देंगे कि भगवान की भक्ति करना एक वेस्ट ऑफ टाइम है और फिर हम भक्ति करना छोड़ देंगे। तो इसलिए बहुत सतर्क होकर के आप भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है और इसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए कि जैसा वो सुनता है कि भगवान कृष्ण का मैं दास हूँ, बस समझ गया और भगवान की सेवा में लग जाता है, और इससे उसको ये तो विज्ञान के द्वारा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके यही चीज विज्ञान के रूप में परिणित हो जाएगी और अपने संबंध का अनुभव वो भगवान से कर पाएगा, तो और विधियों के पालन में उसके एनालिसिस में ज्यादा लगता नहीं है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। कैसी अवस्था में? अपने को कृष्ण के दास के रूप में स्थित करने से और ये निश्चय करने से कि मैं कृष्ण की ही सेवा करूंगा, भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा है भगवान का श्रवण कीर्तन करना, तो उसमें ही व्यक्ति लगता है अधिक से अधिक। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा का अर्थ होता है कि दृढ़ विश्वास कि बस मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं तो सारे कार्य हो गए, अब मुझे और कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। और हमने चर्चा किया था कि जो लोग पुण्यात्मा होते हैं उनके अंदर ऐसी श्रद्धा का निर्माण हो जाता है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह सातवां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। शास्त्रों का मत क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही जीवात्मा का परम कल्याण होता है। इस चीज को हमने सातवें अध्याय में सीखा। हरे कृष्ण।